نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے ہم اگلا باب دیکھیں گے. ابھی تک جو ہم نے دیکھا وہ یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف ہجرت کر کے گئے اس امید کے ساتھ کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کے دین کے ساتھ ہی کچھ وہاں سے پیدا کر دے. لیکن جن لوگوں کے دل بند ہو جاتے ہیں پھر ان کو اس نعمت کی قدر کا احساس نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کے ساتھ بہت ناروا سلوک کیا ان لوگوں نے، دلگیر تھے. واپسی پہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی ایک جماعت سے آپ کی ملاقات کروائی، اور ہمارے لیے اس میں ایک سیکھنے کی بات یہ پتہ چل گئی کہ جب انسان اخلاص سے اللہ کے راستے میں کوئی کام کرنے نکلتا ہے، اگر کوئی ایک شخص اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ دوسرے کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور اگر انسان کسی دعوت کو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں اور دوسری مخلوقات کے ذریعے سے اس دعوت کو قبولیت دے دیتا ہے. جب واپس آئے تو متم بن عدی، اس نے آپ کو پناہ دی، اور اللہ کے نبی نے اس کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہیں کیا. غزوہ بدر کے موقع پہ ایسا ہوا تھا کہ کفار مکہ کی ایک بہت بڑی تعداد قید ہو کر آئی، لیکن کچھ قیدیوں کی رہائی کے لیے جبیر بن معتم، جو اس معتم بن عدی کے بیٹے تھے، انہوں نے فرمائش کی کہ اللہ کے نبی ان قیدیوں کو آزاد کر دیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر متم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا. یعنی کہ آپ اتنا لوگوں کی چیزوں کو ایڈمائر کرتے تھے، ان کی خوبیوں کا احساس تھا آپ کو، اور آپ پھر اس کی وجہ سے کئی دفعہ عزت دینے کے لیے دوسروں کو چھوڑ دیتے تھے. اللہ کے نبی جب طائف سے واپس آئے، اب حالات تو وہی تھے لیکن آپ کے حوصلے اور آپ کے عزم بلند ہو چکے تھے. آپ نے ہمت نہیں ہاری، اور اس بات سے کہ اب تو بس میں یہ کام کروں گا ہی نہیں اور طائف والوں نے مجھے جھٹلا دیا، ایسا نہیں ہوا. آپ نے حج کا موسم جب دوبارہ آیا تو دوبارہ باہر سے آنے والے جو قبیلے تھے اور جو سردار تھے ان کو دعوت دینی شروع کر دی، اور آپ ایسا نبوت کے چوتھے سال سے لے کے دسویں سال تک ہر سال حج کے موقع پہ اسی موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے باہر سے آنے والے قبیلوں اور ان کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے. کچھ قبیلے ایسے تھے جن کو آپ نے دعوت دی لیکن انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لیکن کچھ قبائل اور کچھ انفرادی طور پہ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا. مثلاً بنو عامر، غسان، بنو نصر، کلب اور اس طرح کے جو قبائل تھے انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کا مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ حق چاہے کتنا ہی خوبصورت کر کے ان کے سامنے کیوں نہ رکھا جائے، نہیں ماننا تو نہیں ماننا. اسی طرح ایک قبیلہ تھا بنو قلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ایک شاخ بنو عبداللہ کے پاس گئے، ان کو بڑے پیار سے اچھے طریقے سے اللہ کی طرف بلایا، اور یہ بھی کہا کہ دیکھو تمہارے قبیلے کا نام کتنا اچھا ہے، بنو عبداللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی کسی سے مخاطب ہوں، کسی سے بات کریں، تو اس کی کوئی بھی خوبی جو چھوٹی سی بھی ہو نا اس کو ضرور سامنے لائیں، کیونکہ اس سے دوسرے شخص کے دل میں جگہ بنتی ہے اور وہ آپ کے پیغام کو سننے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جاتا ہے. لیکن اس قبیلے نے بھی آپ کی دعوت قبول نہیں کی. اس کے بعد ایک اور قبیلہ تھا بنو حنیفہ، آپ اس کے پاس ان کے پاس گئے، ان کو بھی دین پیش کیا، لیکن انہوں نے اتنا بدتر قسم کا جواب دیا تھا کہ جتنا شاید کسی اور نے نہیں دیا ہوگا. پھر اسی طرح عامر بن ساسا، ان کو بھی دعوت دی گئی. کہتے ہیں کہ انہوں نے آ کے پوچھا، کہنے لگے کہ میں اگر ایک شخص تھا بحیرہ بن فراس، کہنے لگا خدا کی قسم اگر میں قریش کی اس جوان کو لے لوں تو اس کے ذریعے پورے عرب کو کھا جاؤں گا. یعنی اللہ کے نبی کی خوبیوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا. پھر کہنے لگا اچھا یہ بتائیں کہ اگر ہم آپ کا ساتھ دیں آپ پر کی بیعت کرے، مخالفوں کے سے آپ کو بچائیں، پھر کل اگر آپ کو فتح حاصل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہمیں اپنے کاموں میں شریک کریں گے، یعنی حکومت ہمیں ملے گی یا لیڈرشپ ملے گی؟ تو آپ نے کہا کہ کام کرنے کا اختیار تو اللہ ہی کے پاس ہے. تو کہنے کا، اچھا جی، ہم آپ کی حفاظت کریں، ہم آپ کی خاطر عربوں سے لڑائی لیں، اور جو ہی اللہ تعالیٰ آپ کو غالب کرے تو پھر ہمارے سوا کسی اور کے ہاتھ میں آپ معاملات کو اور اتھارٹی کو کر دیں، تو ہم تو آپ کی بات نہیں مانتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ حق کو اپنے مفادات کی روشنی میں دیکھتے ہیں. سچ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کو اس رنگ میں دیکھتے ہیں کہ یہ سچ مجھے کیا دے گا، اور اس طرح ہدایت کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہی قبیلے کے لوگ جب بنو عامر کے لوگ جو تھے وہ واپس گئے تو ایک بوڑھے شخص کے پاس گئے. حج کے لیے وہ نہیں آیا تھا اپنے بڑھاپے کی وجہ سے. ساری بات سنا دی کہ اس طرح وہاں ایک شخص ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور اس طرح کی باتیں بتائیں. تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے سر کو ہاتھوں میں تھاما اور کہنے لگا کہ یہ شخص جو ہے یہ حق ہے، اور آج تک کبھی کسی نے بنی اسماعیل سے جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، تو یہ بھی نہیں کرے گا. یعنی اس بوڑھے شخص نے پہچان لیا اور کہا کہ تم کیوں اس کو جھٹلا رہے ہو، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ قصہ مختصر یہ کہ اس طرح سے بات آگے چلتی گئی. اب یہ وہ وقت آ چکا تھا کہ اسلام ایک مشہور مذہب بن چکا تھا، فیمس ہو رہا تھا دن بدن اسلام. لوگ مانے نہ مانے لیکن نام تو بہرحال ہو رہا تھا. اسی طرح کچھ لوگ حج کے دنوں میں جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دین پیش کیا. کچھ کے قبول اسلام کا یا جھٹلانے کا واقعہ بہت دلچسپ ہے. مثلا ایک شخص تھے، سوید بن سامت، شاعر تھے، بہت سمجھدار تھے، مدینہ میں رہتے تھے. کہتے ہیں کہ ان کے شرف اور ان کے شعر کہنے اور ان کے اعلیٰ نسب کی وجہ سے لوگ ان کو کامل کہتے تھے، کامل کا خطاب تھا. دعوت دی اس کو تو کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ آپ کے پاس جو کلام ہے وہ میرے ہی جیسا ہے، میرے پاس جو ہے ویسے ہی. آپ نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہنے لگا میرے پاس صحیفہ لقمان ہے. یہ جو سورت بھی ہے نا قرآن پاک میں لقمان پہ، تو یہ ایک بڑے معروف بزرگ تھے اور مکہ میں ان کا چرچا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا کے دکھاؤ. جب اس نے لا کے دکھایا، اب اس میں کوئی غلط چیز نہیں تھی، سب اچھے ایتھکس تھے، جو دین کے بھی اخلاقیات تھے. آپ نے کہا کہ یقیناً یہ بہت اچھا کلام ہے، لیکن جو میرے پاس ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا قرآن ہے، ہدایت ہے اور اس میں روشنی ہے. کہا کہ لاؤ مجھے سناؤ. اس پہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پڑھ کے سنایا، اسلام کی دعوت دی، یہ مسلمان ہوئے. کہنے لگے کہ یہ تو بہت اچھا کلام ہے. واپس مدینہ گئے، جب مدینہ گئے تو جنگ بعاث وہاں لگ گئی اور اس کے اندر قتل کر دیے گئے. یعنی اب دیکھیے کہ چند مہینے زندہ نہیں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اسلام کی دولت دی. اس سے بھی ہمارے لیے حکمت کی باتیں یہ ہیں کہ جب آپ کسی کو کوئی اپنی چیز پیش کریں تو پہلے اس سے بھی پوچھیں کہ تمہارے پاس کیا ہے، تاکہ اگلا آپ کو یہ نہ فیل کرے کہ ہماری چیز بہت اچھی ہے. بعض دفعہ ہم اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں اپنی کسی چیز کی تعریف میں کہ خوب بتاتے ہیں اور دوسرے سے کچھ سننا ہی نہیں چاہتے. پہلے اگلے سے سنیے، بھائی آپ کیا پڑھتے ہیں، اچھا دکھائیے کیا چیز ہے، اچھا اس میں کیا کرتے ہیں، کیا اچھا، چلو میرے پاس بھی ایک چیز ہے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں. اچھا آپ یہ کریے، میرے پاس بھی یہ کورس ہے، یہ کلاس ہے، یہ فلاں ہے، یہ چیز ہو رہی ہے. یعنی میوچویلٹی پہ بات کریں نا تو اگلا بندہ سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور شخص تھے، ایاس بن معاذ، یہ بھی یثرب میں رہتے تھے اور بہت ینگ تھے، بالکل یعنی ٹین، جیسے آپ کہنا چاہیے کہ جوانوں میں سے تھے. اور اس دور میں یعنی یہ جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہیں، اور اللہ کے نبی کو بلکہ ان کے آنے کا پتہ چلا، تو پھر آپ ان کے پاس گئے. یعنی بعض موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گئے پاس. یہ نہیں تھا کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے نا وہ خود بھی پیغام دینے کے لیے چل جاتا ہے. اور انسان کنواں کیوں بنے، بادل کیوں نہ بنے؟ بادل تو خود ہی جا جا کے برستے ہیں دوسری جگہوں پہ. لہذا اللہ کے نبی کو جہاں بھی ضرورت پڑتی، محسوس ہوتا کہ میرے خود جانے سے بات بن سکتی ہے، تو آپ خود چلے جاتے. پھر آپ نے اسلام پیش کیا، ان کو قرآن سنایا، لوگوں نے آپ سے تھوڑی بہت بات چیت کی کیا اور لیکن راستے میں پھر کوئی ایک دوست آ گیا جس کی وجہ سے بات نہیں بن سکی. یعنی لوگوں کے نصیب ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کی وجہ سے بھی بن جاتے ہیں. تو بہرحال اسی طرح ایک صحابی تھے، ابو ذر غفاری، इनके इस्लाम कबूल करने का वाक्या भी बहुत खूबसूरत वाक्या है। कहते हैं जब इनको पता चला कि सवैद बिन सामित जो है वो मुसलमान हो गए हैं, और इसी तरह यास बिन मास के ज़रिए भी पता चला कि अल्लाह के नबी मदीना में आए हुए हैं, तो अबू ज़र को पता चल गया कि ये शख्स कोई इधर आया हुआ है। कहते हैं कि इन्होंने खुद जाने की बजाय अपने भाई को भेजा कि जाओ ज़रा तुम देख के आओ क्या खबरें हैं वहाँ की। इनके भाई आए। अब वो ऐसा दौर था कि किसी को खुल के पूछ भी नहीं सकते थे कि कौन है कैसे हैं। कह रहे हैं मैं इंतज़ार में था कि मुझे कोई शख्स मिले, मैं कैसे पूछूं कि नबी कौन है, मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं इसी तरह मैं बैठा रहा और जाके देखता हूँ क्या होता है। किस्सा मुझसे ये कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इन पर नज़र पड़ गई। पूछा तुम कौन हो? कहा मैं मेहमान हूँ, दूसरे शहर से आया हूँ। कहा अच्छा चलो मेरे साथ रात रह लो। कहा ठीक है। ये उनके साथ चले गए लेकिन कोई बात नहीं की क्योंकि डर रहे थे कि न जाने ये उनके दोस्त हैं या दुश्मन हैं। कहते अगले दिन सुबह हुई फिर हरम में आके बैठ गया कि कोई तो मुझे कुछ बताएगा। फिर कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछने के बाव मतलब पूछने की जरूरत जब ना कर सका तो दोबारा अगले दिन फिर हज़रत अली से मुलाकात हो गई। फिर बातों ही बातों में पता चला कि हज़रत अली तो मुसलमान हैं। फिर पूछा कि वो नबी कौन है? कहा तुम क्यों आए हो? कहने लगे इस्लाम कबूल करने के लिए, इस्लाम के बारे में देखना चाह रहा हूँ। कहते हैं अच्छा ठीक है तुम मेरे साथ साथ चलो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ लेकिन मेरे बिल्कुल साथ ना चलना, लोगों को शक हो जाएगा। थोड़ी दूर दूर चलना, जिधर मैं मुड़ूँ तुम भी उधर मुड़ते जाना ताकि तुम खुद जाके देख लो। कहा ठीक है, थोड़ी दूर रहना लेकिन चलते जाना। कहा अगर कोई तुम्हें देखने लगे तो जूता ठीक करने के बहाने नीचे बैठ जाना। यानी इस तरह आप देखिए कि इस्लाम छुपते छुपाते लोग जो थे वो इस्लाम की तरफ आते थे, इस तरह खुलेआम तो आना हो ही नहीं सकता था। और इस तरह कहते हैं कि फिर मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और जब मैंने आपका कलाम सुना तो फिर मेरे दिल पे इतना असर हुआ कि मैं मुसलमान हो गया। अल्लाह के नबी ने कहा कि अबू ज़र देखो इस्लाम को छुपा के रखना, अभी ऐसा ना हो कि तुम्हारी खबर फैल जाए और लोग तुम्हें तकलीफ़ दें। कहने लगे क्यों आप, मैं ऐसा क्यों ना करूँ, हम हक़ पे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि जब खुल के ऐलान होगा फिर तुम बात कर देना। इन्होंने कहा नहीं। बाहर गए हरम में खड़े होके कुरैश के लोगों के सामने जाके इन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। लोगों ने कहा इस बेदीन की खबर लो, ये क्या बातें कर रहे हैं। कह रहे कि इतना मुझे मारा गया कि करीब था कि मैं मर जाता लेकिन हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह आए और उन्होंने मुझे बचाया और कुरैश को डांटा कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें नहीं पता ये कबीला गफ्फार से ताल्लुक़ रखता है और तुम्हारी सारी तिजारत कबीला गफ्फार के रास्ते से होके आती है। यानी इतना डरते थे कबीलों से और एक दूसरे से कि अगर इनको तुमने कुछ कहा तो तुम्हारे तो काफ़िले ये लूट लिया करेंगे, इनके कबीले के लोग, तुम इनको छोड़ो। लेकिन कहते हैं कि लोग मुझे छोड़ा, अगले दिन फिर वही हुआ, फिर जाके मैंने लोगों के सामने कलमा पढ़ा, फिर लोगों ने मुझे मारना शुरू कर दिया और फिर हज़रत अब्बास ने मुझे बचाया। यानी वो इजहार के लिए मचलते थे कि कोई ऐसी सूरत हो कि मैं करूं। और आपको कहते हैं कि ये अबू ज़र जब वापस गए थे तो इनकी एक शख्स की वजह से इनका पूरा कबीला मुसलमान हो गया था, इतना सच्चा ईमान था। और इनको जब हक समझ आता था दूसरों तक बात करते, अल्लाह ताला उनके दिलों में बात डाल देते। इसी तरह तुफैल बिन अमर दौसी थे, ये भी बहुत समझबूझ वाले शख्स थे, कबीला दौस से थे, सरदार भी थे। नबूवत के 11वें साल ये मक्का में जब आए तो मक्का वालों ने इनकी बड़ी इज्जत की क्योंकि ज़ाहिर है कि आला रुतबे वाले थे। साथ ही इनके कानों में वो बातें डाल दीं कि देखिए आजकल हम एक बड़ी मुश्किल में आए हुए हैं कि एक शख्स ने अपने आप को नबूवत का दावेदार कर दिया और हमारे तो शिराजे बिखर रहे हैं, ख़ानदान टूट रहे हैं, तो आप इसकी बातें ना सुनिए। बस इसकी बातों में असर बहुत है, जो इसकी बात सुनता है वो बस इसके जादू में आ जाता है। कहते हैं मैं इतना उनके इस प्रोपेगंडे से डर गया कि मैंने अपने कानों में रुई दे ली कि कहीं गलती से मेरे कानों में अगर आवाज़ पड़ गई तो मेरा दीन मेरे हाथ से ना निकल जाए। लेकिन फिर कहते हैं कि जब मैं रहा वहाँ तो मेरे दिल में आया कि मैं कैसा बेवकूफ़ हूँ, आखिर मैं शायर हूँ, मैं इतना समझदार हूँ, एक सरदार हूँ, तो क्या भला मैं उसकी बातों में आ जाऊँगा, मैं सुनूँ तो सही वो क्या कहता है। कहते हैं कि मैं ऐसे ही हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलता गया और जब आपसे बैठा बात की, मैंने कहा आप क्या कहते हैं, आप सुनाएं आपका कलाम क्या है। उस पर अल्लाह के नबी सल्लम ने कुरान पाक की तिलावत की, इनके ऊपर इस्लाम पेश किया। तो ये कहते हैं कि मैंने जो बात सुनी तो मेरे दिल में इतनी उतरी कि मैं तो फ़ौरन मुसलमान हो गया, फ़ौरन कलमा पढ़ा, गवाही दी और कहा कि अल्लाह के नबी मैं वापस जाऊंगा, अपनी कौम को तबलीग करना चाहता हूँ, मुझे कोई ऐसी निशानी दें कि लोगों को पता चल जाए कि मेरे पास हक है। अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा कि ठीक है, तुम वापस जाओगे तो तुम्हारे पास एक निशानी होगी। कहते हैं कि जब ये अपने कौम की तरफ वापस गए तो अल्लाह ताला ने ना इनके चेहरे पर एक चिराग की रोशनी पैदा कर दी थी, यानी इनके माथे पे एक अजीब सी चमक आ गई थी जिस तरह अनयूजुअल चमक होती है। तो इस पे इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको देखते ही ये लोग फ़ौरन एकदम कॉन्शियस हो जाएंगे ना, और ये सोचेंगे शायद मेरा मसला कर दिया गया है। तो आप ऐसा करें कि इस चमक को मेरे माथे से हटा के मेरे डंडे के सिरे पे करते हैं। स्टिक थी इनके हाथ में, जैसे वो मूसा वाली कहानी मुझे तो याद आ रही है, जदे बैजा और असा जो था। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल की, अब क्या था कि मेरे जो डंडा था उसके सिरे के ऊपर चमक आ गई, और इस तरह फिर मैंने अपने लोगों को जाके तबलीग करी, और कोई पूछता कोई दलील है तो मैं उनको ये चमक वाली चीज़ दिखाता, और सिर्फ इस एक शख्स की वजह से इनकी कौम के 70 या 80 लोग मुसलमान हो गए। और कहते हैं कि इन्होंने फिर इस्लाम में इतने कारनामे दिखाए कि जंगे युमामा में फिर जाके ये शहीद हुए। यानी एक एक शख्स जो आता था वो बाद में अपने पूरे कुंबे और बिरादरी के लिए एक निशाने मंजिल बन जाता था। आज हम भी दीन सीखते हैं, सिखाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अपने रिश्तेदारों और ख़ानदान वालों से बात करते हुए बहुत डरते हैं। कभी नहीं डरना चाहिए, आप दूसरों का दर्द आमतौर पर दिल में रखा करें, लेकिन अपने रिश्तेदारों का दर्द जो है वो दूसरे यानी ज़्यादा दूसरों से रखा करें, और अपनी दुआ में ये दुआ शामिल करें कि अल्लाह मेरी ज़ात की वजह से मेरे रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि मुझे अपने ख़ानदान वालों के लिए, अपनी कौम वालों के लिए एक मंजिल का निशान बना। देखिए जो बात बंदा अपनी कौम और अपनी बिरादरी को सिखा सकता है ना, बाज़ दफ़ा दूसरे कबीले के लोगों से लोग नहीं समझते, क्योंकि एक गैप भी होता है ना, एक आपस में थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन होता है। जितने भी अंबिया कराम आए वो सारे अपनी अपनी कौमों से ही आए थे ऑलमोस्ट, तो इससे अपने दिल में नियत रखें कि आप उनके अपनी कौमों के हालात जानते हैं, आप उनके अंदर की मेंटेलिटी जानते हैं, उनकी टोन जानते हैं, उस रंग में बात करें, अपनों में घुस के बात करें। जो बात हम सीखते हैं उसको अपने तक रखने की बजाय आगे जाके दूसरों के साथ करें, क्या बड़ी बात है कि अल्लाह ताला हमारे ख़ानदान के उन लोगों को हमारी वजह से जहन्नुम से बचा ले कि जिसके अंदर वो इस वक्त पड़ चुके हों। तड़प की ज़रूरत है, जितना तड़पेंगे अल्लाह ताला उतने ही आपके लिए रास्ते बनाएगा। फिर इसी तरह एक और बड़ा दिलचस्प वाक्या पेश आया अल्लाह के नबी के साथ। एक शख्स थे जिमाद अजदी, दुआत होता है ना जैसे दिमाद अजदी थे, यमन के रहने वाले थे। झाड़पुंग करके और आसेब उतारना इनका काम था, जैसे आजकल भी लोग वो जिन उतारते हैं या कुछ इस तरह के इलाज करते हैं ना। कहते हैं कि जब ये मक्का में आए तो वहाँ के लोगों से सुना कि इस तरह मोहम्मद नाम के एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है। कहने लगे कि मैं इस ख्याल से उनके पास चला गया कि चलो मैं इनका कुछ इलाज कर दूँ, कुछ फ़ायदा हो जाएगा कौम का। खैर अल्लाह के नबी के पास गए, कहने लगे भाई मैं तो आपका मतलब आज सेब उतारने आया हूँ, और आपको अगर कोई ज़रूरत है आप मुझे बताएं कि आप क्या कहते हैं ना, अपना मुझे बताएं कि आपको कोई ज़रूरत है मेरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में फिर वो कलिमात पढ़े जो आप हर खुतबे से पहले अमूमन पढ़ते थे कि इन्नल्हम्दलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहू मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहू व मन युदलिलहु फला हादिय लहू व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। इसमें अल्लाह की तारीफ है, उससे मदद तलब की गई है। अल्लाह ताला जिसको हिदायत दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। फिर उसके आखिर में गवाही है अल्लाह के एक होने की और अल्लाह के नबी के बंदे और रसूल होने की। जमात ने जब ये कलमात सुने तो उसके दिल पे इतना असर हुआ, कहने लगा एक बार फिर सुना दें। आपने दोबारा सुना दिया, कहने लगा नहीं एक बार फिर सुना दें। तीसरी बार सुनने के बाद कहने लगा कि मैं काहिनों की, जादूगरों की, शायरों की कितनी बातें सुन चुका हूँ, लेकिन जो अल्फाज आपके हैं, जो आपका कलाम है, मैंने ऐसा कलाम कभी नहीं सुना। ये तो ऐसे लगता है कि समंदर की गहराई से निकले हुए मोती हैं। कहा अपना हाथ बढ़ाइए और साथ ही कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान हो गया। लोगों ने भेजा था इनको कि जाके इलाज करो, और इनका अपना इलाज हो गया। और आज भी हकीकत है, अगर मुसलमान अपनी सही शक्ल व सूरत मतलब अपने असल इस्लाम के साथ दुनिया में फिरेंगे ना, तो ये इंसानियत जो तड़प रही है ना, गुनाहों की तरफ भाग रही है, लपक रही है, ये खुद ब खुद हमारे हाथों से मुसलमान हो सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है हमें अपने ऊपर मेहनत करने की, अपने दिल में इस दर्द को पैदा करने की। अब ये वो वक्त था कि अल्लाह ताला ने मक्का वालों पे हुज्जत तकरीबन तमाम कर दी थी और अब आपके लिए रास्ते दूसरी तरफ बन रहे थे। कोई नहीं जानता था उस वक़्त कि ये शख्स जो मक्का से उठा और इतनी मुखालफतें आपकी हुई, अब अल्लाह ताला इनके लिए एक और प्लेटफॉर्म बना रहा है, एक और जगह हमवार हो रही है। सन 11 हिजरी का 11 नबी का जो हज का मौसम आया, तो उसमें अल्लाह ताला ने 6 ऐसे लोगों को भेजा जो पूरे मदीना वालों के लिए रहमत की बारिश बने। आप कह सकते हैं कि ये बीज थे जिनके ऊपर फिर तनावर दरख्त बने और जिस पे बेहिसाब फल लगा। और ये 6 शख्स कौन थे? असद बिन जुरारा, औफ बिन हारिस, राफे बिन मालिक, कुतबा बिन आमिर, अकबा बिन आमिर और हारिस बिन अब्दुल्ला। ये 6 लोग थे। इन्होंने जब सुना कि इस शहर में कोई शख्स आया हुआ है जो दीन की बात पेश करता है, तो इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। लिहाजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की थोड़ी सी कोशिश के साथ कहते हैं कि इनकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात हुई। खुलेआम मुलाकात हो नहीं सकती थी। देखिए कि उस दौर में कोई इतने साइंटिफिकली इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे कि आपकी CID की जाए, लेकिन मक्का वाले हर वक्त आपकी टो में रहते थे, इसलिए ये मुनासिब मालूम नहीं हो रहा था कि खुलेआम किसी जगह मिला जाए। तो लिहाजा मिना की एक घाटी थी, यानी एक ऐसी जगह बनी हुई थी पहाड़ों के अंदर छुपी हुई कि वहाँ अल्लाह के नबी सल्लम की इनसे मुलाकात हुई। ये लोग जो थे ये मदीना में चूँकि रहते थे और वहाँ पहले से यहूद मौजूद थे, यहूद की ज़ुबान से ये बात सुन चुके थे कि एक नबी आने वाला है और वो अरब में ही आएगा, और जब वो आ जाएगा ना तो उसके साथ मिलकर हम तुम्हें कत्ल करेंगे। और यहूद का ये ख्वाहिश थी, उनको पता था नबी आएगा और हम इसके साथ मिलके ये मक्का वालों और मुशरिकीन को तबाह कर देंगे। जूँ ही इन लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तो इनके दिलों ने कहा कि हो ना हो ये वही नबी है। अब बजाय इसके कि यहूद हमें धमकियां दें, हम क्यों ना इस नबी का साथ देने लग जाएं। और ये वो वक्त था कि मदीना वाले जंगें लड़ लड़ के थक चुके थे। इनकी जंगें कई कई साल तक जारी रहती थीं। इनको अल्लाह के नबी की सूरत में एक लीडर दिखा, एक राहबर दिखा, एक रहनुमा दिखा। इनको लगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो शख्सियत हैं कि जिनकी रहनुमाई में हम इन फितनों से और इन गलत माहौल की जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें आ चुकी हैं इससे बच सकते हैं। चुनाचे इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लम से बात सुनी, सीखी, और आपने कहा कि ठीक है तुम जाओ और जाके अपने शहर में बात करो, बात निकलती है, देखते हैं क्या होती है। कहते हैं कि जब यहाँ से ये वापस पलटे तो उसके बाद तो फिर मदीना के घर घर में अल्लाह के नबी के चर्चे पहुँच गए। जो बातें आपकी इन्होंने सुनी थी किसी भी तरीके से इन्होंने लोगों को बतानी शुरू कर दी। तो ये सन 11 नबी का साल था कि जिसमें फिर एक और अहम वाक़या अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में हुआ था, और वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपका निकाह था। तीसरी बीवी थी तरतीब के अतबार से, सबसे पहली हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उनकी ज़िंदगी में किसी और औरत से आपने निकाह नहीं किया। उनकी वफ़ात के बाद सौदा बिनते जमा बूढ़ी खातून थी, भारी जिस्म की थी, अल्लाह ने उनसे निकाह करवाया आपका, आपने उनसे निकाह किया। तीसरा निकाह 11 नबी में जो हो रहा है ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से था। अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी थी, बचपन से अबू बकर सिद्दीक़ और अल्लाह के नबी की मुलाकात थी। हज़रत आयशा कहती हैं कि कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता था कि अल्लाह के नबी हमारे घर ना आते हों, लेकिन ना आपके जहन में ऐसा ख्याल था ना कुछ, लेकिन अल्लाह ताला ने जिब्राइल के ज़रिए से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तस्वीर अल्लाह के नबी को दिखाई थी। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने तुझे निकाह से पहले ही देखा था कि जिब्राइल मेरे पास आए और उन्होंने सब्ज़ रेशम के अंदर लिपटी हुई एक तस्वीर दिखाई मुझे, और जब खोला तो वो तुम थी। अब आप देख चुके थे पहले भी, ऑफ कोर्स सारा वो हमेशा से आना जाना भी था, लेकिन इशारा था अल्लाह की तरफ से। असल में अल्लाह ताला ये एक रस्म तोड़ना चाहते थे, और वो क्या कि अबू बकर सिद्दीक एक किस्म के अल्लाह के नबी के मुंह बोले भाई बन चुके थे। और उस दौर के रिवाज में मुंह बोले भाई की बेटी से भी निकाह नहीं होता था, जैसे भांजी या भतीजी जिसको कहा जाता है। तो हज़रत आयशा की उम्र उस वक़्त तकरीबन 6 साल की थी, तो उस वक़्त निकाह के दूसरी इनके ज़रिए से एक ये भी सुन्नत कायम करना थी कि कभी कभी एडवर्स हालात हो सकते हैं, उम्मत पे कोई ऐसा वक्त आ सकता है, कोई ऐसी छोटी उम्र की बच्ची है जिसकी इज्जत के तहफ्फुज़ की ज़रूरत है, जिसको सहारा चाहिए, किसी मर्द के साथ रहे, क्या उसका उसका स्टेटस हो, ज़ाहिर है मुंह बोले रिश्ते तो नहीं बनते, कहीं ना कहीं गुंजाइश हो सकती है तो निकाह कर दिया जाए। और अल्लाह के नबी की जो 11 शादियाँ हुई थी, हर शादी के पीछे कानून बना था। हज़रत खदीजा के ज़रिए से पता चला कि बेवा औरत से निकाह हो सकता है, मुतल्लिक औरत से निकाह हो सकता है, अपनी उम्र से बड़ी औरत से निकाह हो सकता है। फिर सौदा बिनत समा आपसे कई गुना बड़ी थी, उनसे निकाह हुआ, आम शक्लो सूरत की थी। इसी तरह हज़रत आयशा के साथ हुआ। आगे भी हम देखेंगे इंशाल्लाह मदनी दौर में बाकी आपके जो निकाह हुए, हर शादी के पीछे एक हिकमत थी, वो तो एक कानून थे। अल्लाह के नबी एक मुकम्मल रहनुमा थे, आपके ज़रिए से इंसानियत को रहनुमाई देनी मकसूद थी। जो काम आपने कर लिया वो दूसरों के लिए करना भी जायज़ हो गया। तो लिहाजा हिजरत से फिर जो पहला साल था उसमें फिर हज़रत आयशा की रुख्सती हुई थी, शवाल के महीने में 9 साल की उनकी उम्र थी। बहुत लोग इस पर कीचड़ उछालते हैं, उनको हक ही नहीं है कीचड़ उछालने का, इसलिए कि किसी इंसान की आप पूरी शख्सियत को अगर नहीं जानते तो सिर्फ़ एक पहलू को जान के आप क्या चीज़ उससे ले लेंगे। तो लिहाजा हज़रत आयशा से आपकी शादी हुई। स्टिल ये वही दौर था कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक हज़रत खदीजा और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अबू तालब की वफ़ात के गम से नहीं निकले थे। अभी तकरीबन 1 ही साल हुआ था, वो 10 नबी था, ये 11 था। अल्लाह ताला ने ऐसा अहम वाक्या आपकी ज़िंदगी में पेश किया कि जिससे आपको बड़े मख़फ़ी इशारे मिले, और ये वाक्या था मेराज का वाक्या, जिसको इसरा और मेराज कहते हैं। सूरत बनी इसराइल की पहली आयत, 15वें सिपारे की भी पहली आयत है कि सुबहान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, के पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा में ले गया। और इसके बाद सूरत नजम में फिर उस वाक़े का जिक्र है जो बैतुल मक़द्दस से ऊपर आसमानों पे गए। याद रखिएगा कि मेराज सफ़र, सफ़रे मेराज के दो हिस्से थे, एक था आपका ज़मीनी सफ़र जो बैतुल्ला से शुरू करके बैतुल मक़द्दस तक हुआ, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से ये सफ़र हुआ, बुराक आया, आप उस पर बैठे और आपको ये ज़मीन के रास्ते कराया गया। बीच में आपने मदीना को देखा, मदीन को देखा, रास्ते से कुछ चीज़ें देखी, लोगों की जज़ा और सज़ा देखी, फिर आप बैतुल मक़द्दस में पहुँचे, वहाँ अम्बिया कराम मौजूद थे, सबके साथ आपने इमामत करवा के नमाज़ पढ़ाई, मुलाकातें हुई, और वहाँ से फिर आप आसमानों पे गए। जो सफ़र मक्का से ले के बैतुल मक़द्दस का, इसको इसरा कहते हैं। इसरा का मानी होता है रात को जाना, असरी भी अब इबादी, यानी रात के वक्त ये सफ़र हुआ था, इस रात इसलिए इसको इसरा कहते हैं। मेराज का जो लफ्ज़ है ये आइन रा जीम से, उरूज भी इसी से है, बुलंदी। तो मेराज मक्का से वहाँ नहीं थी बल्कि वो बैतुल मक़द्दस से आसमानों पे थी। अब सवाल पैदा होता है कि ये वाक़या कब हुआ, इसके बारे में 6 कॉल मिलते हैं। यहाँ इन अकवाल को सुनने से पहले जहन में ये रख लीजिएगा कि तारीखों को याद रखना, दिनों को मनाना, महीनों को मनाना, ये इस्लामी कल्चर में ही नहीं है, वरना इतने अहम वाक़यात जो हुए उसको लोग याद रखते। तो आप देखिए कि कभी किसी को मुगालता ना मुगालता होता, यकीनन नहीं होता, लेकिन इतना अहम वाक़या था, इसके बारे में 6 कॉल है। बाज़ कहते हैं कि जिस साल आपको नबुवत मिली पहला साल, उस वक़्त ही मेराज भी हो गई, इमाम तबरी कहते हैं ये बात। फिर दूसरा वाक़या इसमें दूसरा कॉल क्या कि नबुवत के 5 साल के बाद आपको मेराज कराई गई, ये इमाम नववी और इमाम कुर्तबी इसको जायज़ इसकी तरजीह देते हैं। फिर तीसरा कॉल क्या मिलता है कि नबुवत के 10वें साल 27 रजब को ही, और ये अलामा मंसूरपुरी कहते हैं। और हमारे इंडो पाक कल्चर में यही तारीख मारूफ हो गई, आज हमारे यहाँ अमूमन 27 रजब को मेराज की बात मानते हैं ना लोग। उसकी वजह क्या है कि ये अलामा मंसूरपुरी की तफसीर जो सीरत है उसका उर्दू तर्जमा हुआ हुआ है, और जो किताब जो उर्दू की चीज़ हमारे कल्चर में आ गई लोगों ने उसको समझ लिया। हालांकि आप देखिए चौथा कॉल भी एक मिलता है, और वो क्या कि हिजरत से 16 महीने पहले नबुवत के 12वें साल रमज़ान में हुई। इसी तरह पांचवा कौल क्या है, हिजरत से 1 साल 2 माह पहले नबुवत के 13वें साल मुहर्रम में हुई। और छठा कौल क्या है कि हिजरत से 1 साल पहले नबुवत के 13वें साल रबीउल अव्वल में हुई। अब अगर आप पहले 3 कौल देखें कि जिस साल आपको नबुवत मिली उस साल, या 5वें साल, और तीसरी ये कि 10वें साल 27 रजब को हुई, तो इसको तो माना नहीं जा सकता। इसकी एक दलील है क्या कि मेराज हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद हुई थी। दलील क्या है कि हज़रत खदीजा की ज़िंदगी में अभी 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं हुई थी, और इस बात पे हर एक का इत्तेफाक है कि मेराज के मौके पे 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई थी। तो ये बात तो अंडरस्टूड है कि मेराज का सफ़र हज़रत खदीजा की वफ़ात के बाद हुआ था, और हज़रत खदीजा की वफ़ात नबुवत के 10वें साल रमज़ान में हुई थी। तो लिहाजा इससे बात तो हो सकता है, इससे पहले नहीं हो सकता। अब रह गई बात 27 रजब की, कहाँ तक है, हो भी सकता है तो नहीं भी हो सकता, इससे सरोकार नहीं। असल देखना यह है कि इस होने से और उसको अगले साल मनाने से इस्लाम का क्या ताल्लुक है। अगर आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस साल के सफ़र के बाद अगले साल ठीक उसी तारीख पे जश्न होता, मस्जिदों मस्जिद नबी में चिरागा किया जाता, लोग जमा होते, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको उनको बड़े राग लगा लगा के अपने मेराज के किस्से सुनाते, और ये सुनना चलती जाती हर दौर में, तो ये वाक़या किसी को डेट भूलनी नहीं थी। ऐसे ही कि जैसे जो लोग बर्थडेस मनाते हैं उनको अपनी तो छोड़ें, ख़ानदान के अक्सर लोगों की बर्थडे याद होती हैं, और जो याद मनाते नहीं उनको कभी अपनी भी नहीं याद रहती। जिस चीज़ की सेलिब्रेशन होती है वो याद रहती है ना। सहाबे कराम ने कोई ऐसा वाक़या नहीं किया कि जिससे ये लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के सफ़र को वो लफ्ज़ों में पेश करें। आज उम्मत ने जो दीन अपना लिया है वो शॉर्टकट्स का दीन है। वो ये चाहते हैं करना कराना कुछ ना पड़े, बस ये कर लेते हैं कि चंद खास रातों को बना लें और उसके अंदर जो काम करना चाहे वो कर लें। मेराज के मौके पे फ़र्ज़ क्या हुआ, उसका पैगाम क्या था, आज भी वो पहलू बड़े बड़े दीनदारों से गाफिल है। अल्लाह ताला ने इस मेराज के सफ़र से असल में नबुवत की तब्दीली बताई थी। ये बैतुल्ला से बैतुल मक़दस तक जाना एक शरीयत से दूसरी शरीयत तक का सफ़र था। इसके फ़ौरन बाद ही मक्का हिजरत होती है और उसके बाद किबले की तब्दीली का हुक्म आएगा। ये सारी तब्दीलियाँ थी कि अब उम्मत मुस्लिमा को वो एजाज़ मिलने वाला है जो कल तक यहूद को मिला हुआ था। अल्लाह के नबी ने सारे नबियों को नमाज़ पढ़ाई, ये साबित की जा रही थी ये बात कि अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदुल अंबिया कराम बनाया जा रहा है। फिर इसी तरह आपको वहाँ जो लेके गया, तो इसका खुलासा मुख्तसर सा जो सही रिवायतों में हमें मिलता है, तो इमाम इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह इसको बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके जिस्म के समेत बुराक पर सवार करके मस्जिद हराम से लेके जाया गया। बाज़ लोग कहते हैं कि मेराज सिर्फ ख्वाब में हुई थी, जिस्म से नहीं हुई, तो भाई फिर इसमें बड़ी बात क्या थी, ये तो हम में से भी किसी को हो सकती है। आप यहाँ बैठे हैं, आप ख्वाब में देखते हैं कि पाकिस्तान गए हैं, सुबह उठ के आप कहते हैं कि अम्मी मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं पाकिस्तान गई थी, तो क्या कोई आप पे हैरत कर सकता है, हाय कैसे चली गई थी, टिकट कैसे लिया था, 5, 6, 7, 8 घंटे की फ़्लाइट के बगैर तुम पहुँच के वापस कैसे आ गई, कोई कोई हैरत करता है, भाई गई थी तो गई होंगी, अब जहाँ मर्जी जाके, ख्वाब की बात में तो कोई बात नहीं। हालांकि अल्लाह के नबी के मेराज के बाद जो प्रोपेगंडा फैला और जो लोगों ने आपकी हंसी उड़ाई वो इसी बात पे थी कि ये हो कैसे सकता है कि एक रात में कुछ जा के वापस भी आ जाए और फिर भी रात का कुछ हिस्सा बाकी हो। तो ये बात जहन में रखने की है कि अल्लाह के नबी को उनके जिस्म के साथ मेराज की गई थी, आपको फरिश्ते लेके गए थे, आपके पास पहले मेराज की रात से पहले कुछ फरिश्ते आए, 3-4 फरिश्ते आप हरम के पास थे, उन्होंने आपका सीना खोला। शक्के आपकी ज़िंदगी में 2 दफ़ा शक्के सदर हुआ, पहला वो हुआ था जो आप बीबी हलीमा सादिया के घर में थे, अब दोबारा वो वक्त हुआ जब आपको मेराज करवानी थी, आपको वो मंज़र दिखाने थे जन्नत के जहन्नुम के आसमानों के 7वें आसमानों के, जो आम इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता। इसलिए फरिश्तों ने आपको रखा और आपको सोता देख कर कहा कि ये कैसे सो रहे हैं, एक दूसरे ने कहा इनकी आंखें सोती हैं लेकिन इनके दिल जिंदा हैं। फिर आपका सीना मुबारक चाक किया गया, सोने का तश्त लाया गया, फिर उसमें आपका सीना काटा गया, फिर उसमें जमजम भरा, जमजम से धोया गया, कहा दिल में जो शैतान का हिस्सा होता है ना, वो आपका धो दिया गया, यानी अब शैतान आपको नहीं बहका सकता। फिर उसके बाद ईमान और हिकमत आपके सीने में भर के उसको दोबारा सी दिया गया, और आपके सीने पे कट का निशान लोग देखा करते थे। आज भी देखिए कि जिन लोगों की बाय ओपन हार्ट सर्जरी होती है, अब तो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले जो होती थी तो वो फिर सीने पे एक हल्की सी लाइन दिखती थी। तो इस तरह की ये निशान अल्लाह के नबी के साथ भी होता था। फिर इस तरह अगले रात जब बैतुल वो आए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो आपको ले के गए। बहुत सारी इसकी तफसीलात हैं, इस पर एक सीडी भी है रजब का, पूरा शबे मेराज और रब रजब का किस्सा, तो कभी मौका मिले तो आप उसको भी सुन सकते हैं। लेकिन यह कि उस सफ़र में फिर आपको बहुत कुछ दिखाया गया, आपने लोगों को जन्नत में देखा, जहन्नुम में देखा, फिर आपको जब बैतुल मक़दस से ऊपर लेके जाना था तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर आपको दोबारा अपने साथ लिया और आप गए पहले आसमान पे। फिर आपकी मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, सलाम किया, बातचीत हुई, उन्होंने आपकी नबूवत का इकरार किया। आपने देखा कि उनके इर्द गिर्द कुछ रूहें हैं, दाईं तरफ देखते हैं तो हंसते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं तो रोते हैं। कहा कि ये कौन है, तो कहा कि इनकी दाईं तरफ इनकी वो औलाद है जो जन्नत में जाएगी, हम में से किसी को नहीं पता कि हम थे कि नहीं वह, और बाईं तरफ कौन है कि जो जहन्नुम में जाएंगे, और उनको देख के ये रोते हैं। फिर उसके बाद दूसरे आसमान पे गए तो वहाँ आपको हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम जो थे उनसे मुलाकात हुई। ये दोनों दुनिया में भी साथ थे तो वहाँ भी साथ थे। इसी तरह होते होते इन्होंने भी आपकी नबूवत का इकरार किया। तीसरे आसमान पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर उसके बाद चौथे आसमान पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा। ये वो नबी हैं कि जिनके बारे में मारूफ ये है कि इन्होंने ये ख्वाहिश की थी कि अल्लाह मेरी जान ज़मीन की बजाय आसमानों पे उतरे, उस आसमान पे निकले, और अल्लाह ने ये हुज्जत भी तमाम करनी थी कि ज़मीन के किनारों में छुप जाओ या आसमान की बुलंदियों पे पहुंच जाओ, जब मौत आएगी तो वहां भी आएगी, तो इनकी जान मलकुल मौत ने आसमानों पर ली थी। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बाद पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम नज़र आए, और छठे आसमान पे फिर आपकी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई, उन्होंने भी आपकी नबूवत का इकरार किया। और मूसा अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आगे जाता देख रहे तो रोने लगे, कहा मूसा आप क्यों रो रहे हैं? कहने लगे मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये नौजवान मेरे बाद नबी बनाया है, लेकिन इसकी उम्मत मेरी उम्मत से ज़्यादा होगी और पहले जन्नत में जाएगी, यानी एक रश्क की वजह से भी रो रहे थे। फिर सातवें आसमान पर गए तो किससे मुलाकात हुई होगी, कौन सा रह गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और आप जहन में ये रखिएगा कि ये नबियों का मुख्तलिफ आसमानों पे होना अल्लाह के हाँ इनके दर्जों के फ़र्क की वजह से था। सबसे ऊपर सातवां आसमान और उसके पास क्या है, अल्लाह ताला का अर्श। इब्राहीम अल्लाह के करीबी थे, हनीफ थे ना, यकसू थे, फोकस थे, उनको अल्लाह ताला ने करीब किया और वहाँ जाके फिर आपकी उनसे मुलाकात हुई। फिर उसके बाद आपको वहाँ से सिदरतुल मुंतहा पे ले जाया गया। सिदरा बेरी को कहते हैं, मुंतहा कहते हैं जो इंतहा हो, लास्ट हद, आखिरी बात, इसके आगे कोई नहीं जाता। फिर वहाँ से आपको बैतुल मामूर भी दिखाया गया। बैतुल मामूर वो जगह जहाँ पे फरिश्ते तवाफ़ करते हैं, ज़मीन में जिस जगह बैतुल्ला है ना, बिल्कुल ठीक इसके ऊपर अगर आप जाएं तो आसमान पे बैतुल मामूर है, घर है एक फरिश्तों का, वहाँ फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। मामूर कहते ही उसको इसलिए कि आबाद होता है, आइन मीमरा उमरा आमरा कहते हैं आबाद करने को, कि वो इतना भरा हुआ घर है फरिश्तों का कि हदीस में आता है कि एक दफ़ा जिस फरिश्ते ने वहाँ तवाफ़ कर लिया उसको दोबारा कभी मौका नहीं मिलता। इसके बावजूद वो घर हर वक्त फरिश्तों के रश की वजह से भरा रहता है, सुभान अल्लाह। और एक दिन में बाज़ रिवायतों में आता है 70,000 फरिश्ते पैदा होते हैं। अल्लाह ताला ने ना जाने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, गैब के पर्दों में छुपाई हुई हैं, और अल्लाह ने अगर हमारे लिए आसानियाँ की तो देखेंगे ये चीज़ें बाद में। आज तो हम इस दुनिया की चीज़ों को देखते हैं, हाय नियाग्रा फॉल देखी है, हाय तुमने फलां दरिया देखा है, तुमने डिज्नीलैंड देखा है, ये तो कुछ भी नहीं, वो गैब के पर्दों में जो चीज़ें छुपी हुई हैं वो तो इससे बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल उसके बाद फिर सिदरतुल मुंतहा के आगे अल्लाह के नबी सल्लम जब गए तो जिब्राइल ने आपका साथ छोड़ दिया, कहा कि अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता, क्योंकि फरिश्ते नूर से बने हैं ना, तो नूर रोशनी है ना, उसके आगे कुछ ऐसी रोशनियाँ थी कि हो सकता है कि ये जाते तो इनके पर जलते। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गए, और बाज़ रिवायतों में आता है कि जब वहाँ आप गए तो आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक की शक्ल का एक शख्स देखा। आपने कहा ये अबू बकर यहाँ से कैसे आ गए? बाद में पता चला कि वो अबू बकर नहीं थे, अल्लाह ताला ने इब्राहिम इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अपनाइत देने के लिए और वो उस माहौल से मानूस करने के लिए आपके दोस्त की शक्ल एक फरिश्ते की बना दी। और इसीलिए बाज़ लोग कहते हैं ना इब्राहिम हज़रत अबू बकर सिद्दीक की फजीलत बयान करते हुए कि ज़मीन पे तो हर जगह अल्लाह के नबी के साथ थे ही, हत्ता कि हिजरत के सफ़र में भी साथ थे, आज कब्र भी साथ है, और आसमानों पे अल्लाह के नबी गए तो वहाँ भी आपकी शबी दिखा दी। ये सच्ची दोस्तियाँ काम आती हैं। अबू बकर उन लोगों में से थे जिन्होंने अल्लाह के नबी के इब्तदाई दिनों में आपका साथ दिया, और आप कहते थे कि यानी मैं सारी दुनिया के लोगों का एहसान दे सकता हूँ लेकिन मैं अबू बकर का एहसान नहीं दे सकता। कि एक मौके पे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके साथ बाहर थी, खुले आसमान पे के नीचे थे आप लोग, तो आपने देख के कहा अल्लाह के नबी कोई ऐसा शख्स है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों जितनी होंगी। देखिए उनके सवाल भी कैसे प्यारे होते थे ना। अल्लाह के नबी ने कहा हाँ है, करी मेरे दिल में है, ज़रूर ये मेरे बाप का नाम लेंगे अबू बकर का। कहा अच्छा आप बताएं कौन है? आपने कहा उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। करी अल्लाह के नबी मैं तो सोच रही थी कि मेरे बाप का नाम लेंगे। तो आपने कहा आयशा तुम अबू बकर सिद्दीक की नेकियों की बात करती हो और आसमान के सितारों को मेयार बनाती हो। अबू बकर सिद्दीक की तो वो 3 रातों की नेकियाँ जो उन्होंने मेरे साथ गारे सौर में गुजारी, उम्र की सारी ज़िंदगी की नेकियों से ज़्यादा है। मुश्किलों में साथ, एडवर्स कंडीशंस में जो अल्लाह के दीन का साथ देता है, अल्लाह ताला उसके दर्जे बुलंद करता है। जान के लाले पड़े हुए थे, नीचे दुश्मन दिख रहा था, ज़रा अपने कदमों की तरफ देखते तो वो देख सकते थे। ऐसे वक्तों में अबू बकर सिद्दीक ने साथ दिया। इस तरह खुशी खुशी कुर्बानियाँ दिया करते थे जैसे लोग खुशी खुशी इनाम लेने जाते हैं। बहरहाल जब अल्लाह के नबी वहाँ गए फिर अल्लाह ताला से कलाम हुआ। यहाँ फिर एक बहुत मुबालगा आरई की जाती है हमारे यहाँ किस्सा गोई में और कहानियों में कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीदार करवाया था। हालांकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला की सही रिवायत में आता है कि जो ये कहे कि अल्लाह के नबी ने इन आँखों से अल्लाह ताला का दीदार किया उसने झूठ बोला, या कोई ये कहे कि अल्लाह के नबी ने कुछ दीन की बातें छुपा ली तो उसने गुना झूठ बोला। कलाम हुआ था लेकिन हिजाब के पीछे से हुआ था, मुबालगे की ज़रूरत नहीं। और इसके आगे क्या हुआ था बहुत सारे वाक़यात हमसे गाफिल हैं, हमें नहीं बताया गया। और ये वो वक्त है कि जहाँ अल्लाह ताला ने 50 नमाज़ें अदा की थी। कोई कहीं जाता है तो तोहफ़े लेके जाता है, ये भी रिवायतों में आता है कि अल्लाह के नबी ने जाके क्या तोहफ़ा दिया था। हम भी कहीं जाते हैं कुछ लेके जाते हैं ना, अमूमन लेन देन होता है ना, तो उस वक़्त कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने ये कलिमात पढ़े थे कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावाति वस्सलाम, जो अब हम नमाज में हम पढ़ते हैं कि मेरी सारी कौली फेली माली बातें अल्लाह सुबहाना ताला के लिए हैं। अल्लाह ताला ने आपको 5 नमाज़ों के तोहफ़े दिए और शुरू में 50 थी, बाद में जब वापस आए तो हज़रत मूसा ने पूछा क्या मिला है? कहा 50 नमाज़ें मिली हैं। कहा आपकी उम्मत नहीं पढ़ेगी, उनको पता था हम जैसों का, वापस जाइए काम करवाइए। 2-3 बार अल्लाह के नबी गए दस दस करते हुए, बिल आखिर 5 रह गई। हज़रत मूसा ने कहा अभी भी जाइए, ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे। तो हज़रत अल्लाह के नबी ने कहा कि अब मुझे अपने रब से शर्म आती है। ज़रा सोचिए जब आज हम नमाज़ नहीं पढ़ते तो हम कितना शर्मिंदा करते होंगे अपने नबी को। और इस मौके पे फिर अल्लाह ताला ने एक और तोहफ़ा दिया, और वो क्या कि कहा था शुरू में कि 50 नमाज़ें हैं तो अब तुम 5 पढ़ोगे ना तो 50 का सवाब मिलेगा। ये दूसरा तोहफा था क्या कि तौहीद वाले के हर अमल के उसको कम से कम 10 अजर मिलते हैं। यानी हम एक नेकी करते हैं ना तो फरिश्ते उसको 10 लिखते हैं, हम 2 करते हैं तो उसको 20 लिखते हैं, 3 करते हैं तो 30 लिखते हैं। यानी ये दूसरा तोहफा था कि हर एक अमल 10 गुना उसका अजर मिलता है। और अल्लाह ताला बात नहीं बदलते, आज अब देखिए जब हम 5 पढ़ते हैं तो फिर 50 का अजर है। और सारी शरीयत ज़मीन पे मिली और नमाज आसमान पे मिली, क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी को मेराज करवाई आसमानों पे बुला के। और हर इंसान की मेराज होती है ये याद रखिएगा। अब हज़रत यूसुफ़ की मेराज हुई थी कुएं में गिरा के, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मेराज की गई थी आग में डाल के। ये परख होती है, ये देखना होता है कि एक बंदे का मुकाम क्या है, वो कितना बोझ ले सकता है। और आज उम्मते मुस्लिमा की मेराज होती है जब वो जाए नमाज पे खड़ी होके अल्लाह अकबर कहती है, सारी दुनिया से बेनियाज। ज़मीन पे रह के बंदा उरूज पा लेता है जब वो 5 नमाज़ों के साथ अपना ताल्लुक़ रखता है। हम सब अपनी नमाज़ों का हाल देखें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें ऐसी खूबसूरत इबादत करने वाला बना दे कि जैसी तेरी जात का हक है। अल्लाह अकबर। इस तरह फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए। अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला को नहीं देखा बल्कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा था। कुछ बड़े खूबसूरत वाक्यात हैं जो इस मौके पे आपको देखे दिखाए गए थे। वक्त पूरा हो चुका है, मैं नहीं चाहती कि आप लोग लीले हों। इंशाल्लाह दिल तो नहीं चाह रहा छोड़ने को यहाँ, लेकिन मंडे को फिर कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, कल छुट्टी है, खुश हैं? कितने लोग सोने की खुशी में खुश हैं? इंशाल्लाह कल छुट्टी लीजिए, उसमें फ्रेश हो, अपना असाइनमेंट कीजिए अच्छे तरीके से, घर में बैठिए, रोज़ घर से निकल रहे हैं। जी एक मिनट, छुट्टी तो नहीं, अभी मैंने कहा तो नहीं जाए जी। आप कुछ कह रहे हैं, कुछ सवाल? हाँ जी, मंडे को वही टाइम आपका जो रेगुलर 9:30 का टाइम से लेके सवा, और आखिरी वीक है आपका, जितना फ़ायदा उठा लें आ लें। देखिए आप में से कोई एक छुट्टी करता है ना, और उसके मुकाबले में वो 5 घंटे घर में जो मर्जी अहम काम करो, वो $100 भी 1 घंटे के कमाने के लिए जॉब पे हो या डॉक्टर पे बैठा है, कुछ भी है, उसने फिर भी लॉस ही किया। कोशिश करें कि एक दिन की छुट्टी ना, बल्कि इस वीक में अपनी साथियों, दोस्तों, फ्रेंड्स को बुलाइए मोस्ट वेलकम, ताकि हो सकता है उनके दिल में ये ख्वाहिश आए, और अल्लाह करे कि आगे से रमज़ान का जो कोर्स करेंगे हम लोग इंशाल्लाह ताला वो उसमें भी आपका साथ दें। जी साथ में आसमान से ऊपर की जगह, एक बेरी थी और आपने देखा कि यानी एक बेरी है जिसको सोने की टिड्डियों ने छा रखा है, यानी उस पर सोने की टिड्डियाँ बरस रही हैं। बहुत प्यारी इसकी डिस्क्रिप्शन है। और ये यानी एक ख़ास दरख्त है जिसकी जड़ें जन्नत में थी। बहुत इसकी डिटेल्स हैं, लेकिन चूंकि हम अब अपने वक्त के हिसाब से इसको कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह एक दफ़ा आप इसको थोड़ा भी सुन लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ें दोबारा भी आपके सामने आती जाएंगी, तो अल्लाह करेगा कि आपके लिए बेहतरी होगी। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।